सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनाय पराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न माम चरणान्ति हम लोग कल से भगवान की कथाएं श्रीमद् भागवत आरंभ किए। हमने जो कुछ कहा अपनी बात नहीं कही, हमने श्रीमद् भागवत की बातें जो हमने गुरु परंपरा की धारा में हमने सुना भागवत की बातें कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की बातें प्रामाणिक नहीं होती, श्रीमद् भागवत की बातें प्रामाणिक है। हम इस पर निर्भर कर सकते हैं। यह भागवत सुखदेव गोस्वामी जी मुक्त महापुरुष हैं। उन्होंने व्यास और नारद की इच्छा से मरणासन्न सुख परीक्षित महाराज जी को सुनाया, केवल 7 दिन सुनाया, अधिक दिन नहीं। और भाव सागर से परीक्षित महाराज पार होकर के राधा कृष्ण की वृंदावन में ब्रज में नित्य सेवा को प्राप्त किया। तो कैसे वो सुन रहे होंगे, किस निष्ठा से सुन रहे होंगे, जरा विचार करके देखें। हम लोग भी उसी कथा को सुनते हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं होता, कैसे हो गया, भक्ति के साथ हम सुने। किंतु भक्ति कहते हैं किसको? ठाकुर जी के मंदिर में गए, जहां पर भागवत हो रहा है वहां पर गए, कुछ कीर्तन करते हैं, ढोल मजीरा इत्यादि बजा करके कीर्तन भी कर लेते हैं, घर लौटे तो फिर उसी 96 के फेर में की 99 के फेर में हरि कथा जो कुछ हुआ मंदिर में ही छोड़ाए, इसे नहीं, भक्ति का स्वरूप जानना होगा। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है उसी रूप में हमें सुनना और समझना होगा। पहले बतलाया गया कि जिस प्रकार से व्यास देव जी सारे ग्रंथों को वेदों का विभाग कर लिया, वेदांत सूत्र का प्रणयन किया, महाभारत की रचना की, उसमें गीता रूपी रत्न को भी उन्होंने रचना की, प्रकाश किया, 18 पुराण भी संक्षेप में बना लिए, किंतु आत्मा संतुष्ट नहीं थी। न जाने क्यों उनका चित्त खिन्न था, असंतुष्ट था। इतने में नारद ऋषि आ गए, काजे गुरुवर मैं समझ नहीं रहा जी हमारी वृत्ति क्यों असंतुष्ट है, मैं मुझे संतोष नहीं लाभ हो रहा है। न जाने मालूम होता है जी हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई, अभाव रह गया। अरे तुमने तो वेदों का विभाग किया, सारे धर्मशास्त्र बनाए, तुम जगत के गुरु हो, तुम बतलाओ क्यों अभाव रह गया। नहीं नहीं गुरु जी, मैं तो नहीं समझ सका, आप बतलाइए। उन्होंने कहा जी हां, तुमने पुराणों में विविध देवताओं की उपासना को श्रेष्ठ बतलाया, कहीं पर काली जी की उपासना, कहीं दुर्गा जी की उपासना, कहीं शंकर जी की उपासना, कहीं गणेश की उपासना, कभी सूर्य की उपासना इत्यादि आप बतलाई। महाभारत भी बनाया तो उसमें सांसारिक बातों को अधिक रखा, उसमें आपने ये नहीं बतलाया कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवत्ता की सीमा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये आपने निश्चित करके नहीं बतलाया। और दूसरी बात, कृष्ण को कौन उपासना सबसे अधिक प्यारी है, सहज सरल रूप में उनको कैसे पाया जा सकता है, कौन सी उपासना है, आपने कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया कि गोपियां जो कृष्ण की उपासना करती थी, कृष्ण उसका ऋण नहीं चुका सकते थे, आपने तो कहीं नहीं लिखा। आपने कृष्ण के लीला चरित्र इधर उधर के लिखे, महाभारत में युद्ध किया, कहीं झूठ बोला भी कहीं सच बोला, ये सब तो आपने लिखा। अर्जुन का घोड़ा धोया उसके सारथी बने, ये सब तो लिखा, किंतु अर्जुन के वो मित्र वृंदावन के कृष्ण है बंशीधारी मयूर मुकुटधारी, और गोपियों के प्राण बल्लभ हैं, और गोपियों की आराधना से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऋण को कभी भी जीवन में पूरा नहीं कर सकता, मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी बन गया। तुमने ये नहीं देख लिया कि यशोदा मैया अपने प्रेम से उस परब्रह्म को अपने प्रेम की रस्सी से डोरी से बांधती, ये तो नहीं लिखा। आपने ये नहीं लिखा जे कृष्ण सुदाम श्रीदाम पशुदाम लवंग इत्यादि सखाओं के प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं, उनका जूठा खाते हैं, उनसे हार जाते हैं, ये तो आपने नहीं लिखा। आपने गोपियों की जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसको आपने कहीं नहीं वर्णन किया, जिससे कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं गोपियों के, ये तो नहीं लिखा, इसलिए कहीं आप इसको उल्लेख कीजिए। तब उन्होंने समाधि में श्रीमद् भागवत को देखा, कृष्ण के बाल्य से लीला से लेकर के द्वारका लीला तक जितनी लीलाएं हैं सब उन्होंने देखा, और देखा कि जो जीव भगवान को भूल रहे हैं, कृष्ण को भूल रहे हैं, वो संसार के पचड़े में पड़ रहे हैं, 99 के फेर में पड़ रहे हैं, और जो लोग भगवान के तरफ में चल रहे हैं, भगवान का सेवा भजन पूजन कर रहे हैं, वो कृष्ण का ओसा जी भवसागर को तार करके बैकुंठ और उससे ऊपर वो लोग वृंदावन में पहुंच रहे हैं, ये देख करके उन्होंने जस्या वै श्रूयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपपद्य पुंसा शोक मोह भया, इसके श्रवण करने से उसको ऐसा लिखा कि उसके श्रवण मात्र से ही संसार की सारी आसक्ति कट जाएंगी, जन्म मरण बंद हो जाएंगे, उसका शोक मोह भय सदा के लिए दूर हो जाएगा, उसका जीवन सुखमय और शांतिमय उठेगा, इस मत भागवत के साथ, इसलिए जीवों के कल्याण के लिए लिखा। मैं तो चाहता था जिसे अंततः 7-8 दिन 10 दिन रहकर कृष्ण की पूरे लीला कथाओं को अच्छी तरह से सुनाऊं, ये एको हो रहा है, लीला कथाओं का श्रवण कराऊं, किंतु हमें भी समय नहीं है, आप लोगों को भी समय नहीं है, यदि भगवान चाहेंगे तो भविष्य में देखेंगे। इन लीलाओं कथाओं का बड़ी मधुर कथाएं हैं, सुनने में मधुर और बड़ी शक्तिशाली, जो बरबस कृष्ण के चरणों में आपको खींच लेंगे। उनकी कथाएं, उनकी कथाएं कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, उनका नाम कृष्ण के स्वरूप से भी अधिक दयालु है। अधिकांश रूप में जो हम कल हमने बतलाया, जीव मात्र का धर्म सनातन धर्म प्रेम है। आदमी बिना प्रेम के रह नहीं सकता। पशु पक्षी कीट पतंग यहां के सुअर गधे भी बिना प्रेम के नहीं रह सकते, किंतु इन लोगों का जो प्रेम है विकृत प्रेम है, ये मोह है, आसक्ति है, काम है, लस्ट है। और कृष्ण के प्रति जीवों का जो प्रेम है वो भी शुद्ध है, जो मुक्त जीव है। स्वरूपगत जो हमारा धर्म है ये प्रेम है। आप लोग देखेंगे जो बद्ध अवस्था में भी हम किसी न किसी रूप में सुख खोजते हैं। यह सुख क्या है, इसको दूसरे शब्दों में आनंद कहा जा सकता। आनंद बिना प्रेम के होता नहीं, इस चीज को समझे। इसलिए मनुष्य को हम कभी कभी, मैं हॉलैंड में इत्यादि में गया, फ्रांस में गया या इंग्लैंड में गया, हमने देखा जिसे लोग सवेरे टहलने के लिए आ रहे थे, अपने साथ में दो कुत्ते, चार कुत्ते बड़े बड़े साथ में लेकर के घूम रहे हैं। मैंने पूछा जी भाई इनकी पत्नी साथ में नहीं, इनके बेटे या बेटियां साथ में नहीं, ये कुत्तों को लेकर के घूम रहे हैं, क्या बात है। लोगों ने बतलाया ये बात ये है कि ये पत्नी पर विश्वास नहीं करते, बेटा बेटियों पर भी विश्वास नहीं करते। कुत्ते अंततः नमक हराम ही नहीं करेंगे, इसलिए कुत्तों से प्यार करते हैं। बात भी सही कुछ है। प्रेम आदमी चाहता है, उस कुत्ते को ऐसे चूचू कर दो, प्रेम से बुला लो तो दुम हिलाता हुआ पास में आ जाएगा, और दुद दुद ऐसे करो भाग जाएगा। किसी न किसी रूप में, विकृत रूप में हम प्रेम चाहते हैं। स्त्री और पुरुष का अभी जो भाव है ये क्या है, उसी प्रेम का विकृत रूप है और स्वार्थ में है। स्त्री के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि अपने प्रति, अपना काम भोग की लिप्सा को हम पूर्ण करने के लिए उसे प्रेम करते हैं। वही स्त्री का ना कट जाए और सेवा नहीं कर सके, अस्पताल में चली जाए, एक महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने, कितना दिन तक प्रेम करेंगे, झट नवेली एक घर में ले आएंगे। और स्त्री भी वैसे ही, हमारे सुनते हैं कि महाशय कैंडी जी की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थी, उनकी स्त्री ने 10 बार या 12 बार उन्होंने लव अफेक्शन करके अपने पति को बोल दे। ये उनके लिए गौरव की बात है, हमारे भारतवासियों के लिए नहीं। इस चीज को भी आप लोग सावधानी रहें, इसमें प्रेम ट्रेम नहीं है, अपनी काम लिप्सा है। हम रुपये से प्रेम करते हैं, रुपये के लिए नहीं, आयरन चेस्ट में उन्हें रखते अपने सोने के आभूषणों को, किस लिए, अपना भोग करने के लिए। हमको स्त्री प्यारी नहीं है, उसके द्वारा हमारा जो भोग है वो प्यारा है। यदि वो थोड़ी सी दूसरों से प्रेम कर ले तो देखिए, बंदूक से अपने भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। पति पति के लिए प्यारा नहीं, वो हमारे भोगों के लिए प्यारा है। पुत्र जब तक कि हमारी सेवा करता है तब तक प्यारा है। स्वार्थ नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, ये संसार का स्वार्थ में है, किंतु उसी प्रेम का विकृत भाव। इसलिए बिना प्रेम का कोई रह नहीं सकता। आदमी आनंद खोजता है, इधर उधर करता है, सारा विश्व मिल करके आनंद की खोज करता है, सुख की, किंतु सुख खोजने से नहीं मिलता, वो तो हमारे स्वरूप में ही है। इसलिए कोई बिरले साधु संत यदि मिल जाए ऐसे, अपनी शुद्ध वाणियों से हमारे चित्त की वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी दया है। इससे बढ़कर के और दया नहीं। बिना साधुओं की कृपा के शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमको समझना चाहिए जो भक्ति कहते हैं किसे, क्या मजीरा बजा करके हरे कृष्ण ये करना ही भक्ति है, इसको विचार करें। जब देखा जो 50 आदमी हैं और शहर के बीच में आए तो नाचने लगे और मजीरा जोर से चलने लगा और लोगों को दिखला दिखला कर कर, और जहां पर कोई नहीं है तो मजीरा भी रखती है, मल्ला की झोली भी रखती, फिर कोई भिखारी नहीं है, ये भजन है। भजन कहते हैं किसको, भक्ति कहते हैं किसको, इसको थोड़ा सा स्वरूपता समझना चाहिए। भक्ति हमारे पूर्व पूर्व महर्षियों ने शास्त्रों में लिखा, सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान में बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के चित्त की वृत्तियां लग करके उनके प्रति अनुराग प्रेम हो जाए, इसका नाम भक्ति है। श्रीमद् भागवत में और कुछ अधिक कहा, भागवत में कहा गया लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक प्रतिहाता जात्मा संप्रसिद्धति। भक्ति वह हमारे जीव की वृत्ति है जो तैल धारावत अभिछिन्न गति से, जैसे मधु की धारा ऊपर से गिरती है ना, अवच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में अपने आप लग जाए, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। हम मंदिर में देखते हैं, शिव मंदिर में विशेषकर श्रद्धालु लोग जाते हैं, दो पैसे का बताशा, एक पान सिंदूर और जो कुछ चीज है रख दिया, और उनकी देहली पर चौकटे पर ऐसे ऐसे दबाते हैं, हमारा बिजनेस प्रभो खराब चल रहा है, आपको मैं एक पौवा बताशा चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, हमारा लड़का 2 वर्ष फेल हो गया, प्रभु हमारी करुणा कब सुनेंगे, हमारे प्रति करुणा कब होगी, आपको 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊं, दूध से स्नान कराऊंगा हे ठाकुर जी, और दबाते हैं। ये भक्ति है, कोई अपने रूप को दूर करने के लिए ठाकुर जी की सेवा करता है, भागवत का पाठ 7 दिन के लिए कराता है, ये भक्ति है, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा दी हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने, आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और उसको पालन करने की भी चेष्टा करेंगे। हम लोग मनोरंजन करने के लिए बहुत दूर भारत से नहीं आए, पैसे के लिए भी नहीं आए, इज्जत के लिए नहीं आए, जो आप लोगों का मनोरंजन कर देंगे आप लोग पैसा दे दें, अरे भाई हम लोगों ने तो घर बार छोड़ ही दिया है, आप लोग क्या देंगे हमें, आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो दे सकते। हाँ एक चीज दे सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक कान दे सकते हैं, हम कान के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को, जो हमने अपनी सिद्धि की है या समझा है, उस चीज को हम लोग देने से आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करने के, आचरण करने की नियत से इसको सुनेंगे तब तक कुछ फल होगा, और नहीं तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है, कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। एक आदमी एक दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, लाखों करोड़ों जीवनों तक यदि भगवान की कथा को सुनता है और हरिनाम कीर्तन भी करता है, 1-1 लाख 2-2 लाख नाम रोज करता है, तब होता ना कृष्ण पादे पाए प्रेम धन, प्रेम धन उसको नहीं मिलता। कौन प्रेम धन? ब्रज का जो गोपियों का प्रेम है वो नहीं मिलेगा, जन्म मरण बंद हो जाएगा, मोक्ष आपको मिल जाएगा, भगवान में जो मिलने का मोक्ष कहते हैं ये सब आपको हो सकता है सहज ही, जन्म मरण के दुख भी दूर हो जाएंगे उस नाम से, किंतु ब्रज का जो प्रेम है ये नहीं मिल सकता। कृष्ण आपके वशीभूत नहीं होंगे, कंट्रोल्ड नहीं आपके हो सकते हैं, वो एक निराला चीज है, वो कैसे मिलेगा? कोटि कोटि जन्मों तक श्रवण और कीर्तन करने से नहीं मिलेगा। क्यों? यदि आप अपराध के साथ में करते हैं, साधु गुरु वैष्णव की निंदा करते हुए करते हैं, मन लगा करके नहीं करते हैं, तृणादपि सुनीच होकर के नहीं करते हैं, दीनहीन होकर के, चित्त को एकाग्र करके, ब्रजवासियों के अनुगत होकर के नहीं करते हैं, भाई नहीं मिलेगा। इसलिए पहले भक्ति का डिफिनेशन, परिभाषा समझना चाहिए और वैसे ही अपने जीवन में आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को यह शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? राधा भाव दूत सबलितम नौमि कृष्ण स्वरूप। कृष्ण ही है अपने भावों का आस्वादन करने के लिए और नाम प्रेम का प्रचार करने के लिए और द्वैताचार्य की प्रार्थना का पूरा करने के लिए और चौथे युग धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, ये सब कारणों से नंदनंदन ही राधा जी की भाव और अंग कांति को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को यह बतलाया, क्या बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। जरा ध्यान से सुनने की चेष्टा करेंगे यदि जिसको ग्रहण करने की इच्छा है। अपने तन से, मन से, वचन से, भावों से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो चेष्टाएं होती हैं अनुकूल रूप में, जिसमें अपने लिए कोई भी लालसा, कामना, वासना नहीं हो, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की बात हो, और ज्ञान कर्म जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि से वो अतीत हो, उसके द्वारा कवर नहीं होना चाहिए, तब तो ये भक्ति होगी। सबसे पहला शर्त है आप श्रवण कीर्तन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, किंतु अपने सुख के उद्देश्य से करते हैं तो ये भक्ति तो होगी किंतु ये सकाम भक्ति हुई, इससे भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी, इसी जगत में रह जाएगी। अब उदाहरण देकर के बतलाता हूं साधारण, भागवत में ध्रुव महाराज जी का चरित्र आया। ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। गोदी में बैठने का मतलब क्या, पिता का बाद में राज सिंहासन हमको मिले, इसको कहते हैं गोदी में बैठना, उत्तराधिकारी होना। किंतु उनकी विमाता, विमाता समझते हैं सौत की मैया, उसने कहा जी ध्रुव तू अपने गोदी पिता के गोदी में नहीं बैठ सकता, तुम मरो और मर करके हमारे गर्भ में आओ, फिर जन्म लो, तब फिर पिता की गोदी में बैठना, ऐसा दुस्साहस मत करो। रोक दिया, छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का शिशु छटपट छटपट करके रोने लगा, रोते हुए अपनी मैया के पास में गया। मैया ने बात समझी, कहा जी बेटा तुम इसके लिए रो रहे हो, अरे तुम्हारा भैया है श्री हरि, उसकी उपासना करने से, ध्यान करने से, भजन करने से वो ये कहा तो विश्व ब्रह्मांड का राज्य दे सकता है, मैं तो जरूर जाऊंगा, बस वन में चला गया। और नारद जी की कृपा से उसने ऐसी कठोर तपस्या की जो पहले महीनों में भोजन छोड़ दिया, इसके बाद में पानी छोड़ दिया, हवा छोड़ दी, श्वास लेना भी छोड़ दिया, रोक दिया। छठवें महीने में एकदम समाधिस्थ हो गया, ब्रह्मांड कांपने लग गया, प्रभु साक्षात रूप में उनको दर्शन दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण हो, और जो ही जब अंतर ध्यान होने लगे तो यह शिशक शिशक करके रोने लगा, हाय हाय मैंने क्या किया, मैं तो कांच खोज रहा था और मिल गया चिंतामणि, और उस प्रभु से ये संसार का राज्य मैंने मांगा, धिक्कार है मुझको। किंतु का वर्षा यदि कृषि सुखानी, वर्षा होने से ही क्या लाभ है, यदि खेती बाड़ी सूख गई, आदमी मर ही गया तो फिर उसकी सेवा की क्या आवश्यकता है, उसे सोने के आभूषणों से मरे हुए कंकाल को यदि लाद भी दो तो उसे क्या लाभ है। उनकी गति क्या हुई, भगवान का तो भजन किया ठीक है बहुत कठोर रूप में, किंतु भगवान को प्रसन्न करके मांगा क्या, उनके अंदर में लालसा थी कि मुझे राज्य मिल जाए, राज्य मिल गया। राज्य कितने दिन के लिए मिला, 60,000 वर्षों के लिए मिल गया, या कितना। अब रोने लगी हमारा जीवन वृथा गया, मैंने यदि कुछ कामना नहीं करता तो हमारे कल्याण होता। इसलिए इस परिभाषा में जो आया अन्नाभिलाषिता शून्यम, भक्ति करो, भगवान का नाम कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवा अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यात्म निवेदनम, ये भक्ति नौ है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इसके बाद में श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आदि, ये नौ प्रकार की भक्ति। इनमें भी पांच प्रधान हैं, क्या क्या? साधु का संग, कैसा? ऋषि, और अपने जाति का, जाति में स्वजाति, जैसे मैं चाहता हूं भावना ऐसे वो गुरु हमारे, और सिद्ध हो, रसिक हो, तत्त्वज्ञ हो, और हमारे भावना के अनुकूल भजन करने वाले हों, ऐसे साधुओं का संग। वृंदावन में वास हो, श्रीमद् भागवत का श्रवण और भगवान नाम का कीर्तन, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, वृंदावन वास और शिव विग्रह का सेवन, राधा कृष्ण का सेवन, ये पांच। इसमें भी श्रवण कीर्तन स्मरण तीन प्रधान, और इसमें भी केवल नाम संकीर्तन सबसे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये तो है, ये तो भक्ति हुई। किंतु ये सब करो किसके लिए? अपने लिए कोई अभिलाषा मत करो, उनसे चाहो मत। ऐसा कौन हुआ? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का चरित्र भागवत में कितना सुंदर बतलाया गया। नृसिंह देव जब प्रकट हुए, जबकि हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए दौड़ा, खंभ में एक मुष्टिकाघात किया, बोले तेरा भगवान कहाँ है? खड़ग खंभ में सब में सर्वत्र है, विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसकी भगवान नहीं है। तो तुझे दिखता है तो हाँ मुझे दिखता है, आप में भी वही है, तेरा भगवान इसमें है, तो देखो तो यदि खंभे थे उसको मैं तोड़ता हूं, कहां तेरा भगवान है, तेरी रक्षा करो। बस एक ऐसे मुष्टिका से आघात की, वो चूर्ण विचूर्ण खंभा हो गया, और उसी समय न नरम वो न मनुष्य और न सिंह, दोनों का मिला हुआ नृसिंह रूप। इसने वर मांगा था, मैं जल में नहीं मरू, थल में नहीं मरू, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, किसी मनुष्य से नहीं मरू, गंधर्व से नहीं मरू, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरू, किसी महीने में नहीं मरू, दिन में मरू न रात में मरू। किंतु भगवान ने क्या किया? उनसे दो अंगुल बुद्धि अधिक रखते हैं, दिन में नहीं, रात में नहीं, शाम को, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, कहां? दहली के ऊपर में, अपने जंघों पर रखकर, अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नखों से उसके नाड़ी इत्यादि सब निकाल करके, किसी महीने में नहीं, मलमास में, मलमास जानते हैं, अधिक महीना होता है वो, हर अढ़ाई वर्ष के बाद में, जिसको अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं, जिसमें फरवरी में ही 29 दिन का, जब चार कितने अढ़ाई वर्षों में एक बार आता है, तो उसमें चार वर्ष में, तो उसमें में ये लीप ईयर होता है, वो लोग जल्दी से लगा लेते हैं। हमारे भारत में एक एक पल का हिसाब रहता है, उसका हिसाब एकदम ठीक बैठता है, इनकी गणना कुछ गड़बड़ है, ये लोग गड़बड़ घोटाला करके थोड़ा सा इधर उधर लेकर के लीप ईयर बना देते हैं। हमारा एक एक क्षण का, एक एक पल का ये सब हिसाब लेकर के करते, उसको अधिक महीना कहा गया, उस महीने में मारा। इस तरह से सत्तम अभिधातम निज भक्त भाषितम, भक्तों की रक्षा करने के लिए स्तंभे से निकल करके आ गए, और उसको क्षण मात्र में ही उसे मार गिरा। प्रहलाद से कहा, जब बेटा मुझे देरी हो गई, विलंब हो गया, तुम हमसे कुछ मांग लो, हमारे लिए तुम्हारे पिता ने बहुत कष्ट दिया, मैं चाहता हूं कि तुम हमसे कोई वर मांगो। तो उन्होंने उत्तर किया दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं बनिया नहीं हूं जो वजन करके किसी चीज को दूंगा। उसमें भी डंडी मार लेते हैं बनिए लोग, अच्छा माल दिखला करके घटिया माल दे देंगे, सप्तरूप में बिजनेस नहीं करेंगे। एक स्वर्णकार अपनी मैया का सोने का हार बना रहा था, उसमें से भी काट लिया कुछ परसेंट। तो मैं बनिया नहीं हूं जो आपका जो भजन कर रहा हूं किसी लालसा से, जागतिक लालसा या परमार्थिक लालसा से नहीं, ये हमारा स्वभाव सिद्ध अधिकार है, इसलिए कर रहा। लोग इस चीज को नहीं समझते, इसलिए प्रहलाद महाराज जी कैसे हैं, भक्त हैं। कोई कामना नहीं है, ऐसा होना चाहिए, किंतु हमारे भक्त लोग वो भी नहीं चाहते हैं, इनको ज्ञानी की श्रेणी में रख दिया, ज्ञानी भक्त। इनसे बढ़कर के महाराज चित्र के महाराज अम्बरीश हैं, वो अपने हाथों से भगवान की मूर्ति की पूजा करते, आंखों से भगवान और भक्तों के चरण को दर्शन करते, मन से सब समय भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करते, जीवा से भगवान का नाम गान करते, हाथों से भगवान को मस्तक लगा करके प्रणाम करते। उनकी जितनी इंद्रियां थी सब भगवान की सेवा में लगी हुई थी, किसी चीज के लिए नहीं। इसलिए अम्बरीश महाराज यद्यपि साधक हैं तो भी उनसे प्रहलाद महाराज जी से बहुत ऊपर हैं, ज्ञानी नहीं शुद्ध भक्त हैं। इनसे भी अधिक कौन श्रेष्ठ है महाराज चित्रकेतु, यदि आप भागवत की कथा सुने होंगे। उनकी लालसा थी जे प्रभु हमारा तन मन वचन भावना सब भगवान के चरणों में लग जाए। किंतु इनका आराध्य कौन है निर्णय ठीक नहीं हुआ, कौन सा इनका भाव प्रधान है। किंतु भाव में एक आया, अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्ने जथा बच्चतर क्षुधार्था प्रियः प्रियेव विसुतं विषन्ना मनोर्बिन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। ओ प्रभो मेरा तन मन वचन सब कुछ आपके चरणों में लग जाए। कैसे, जैसे जिस पक्षी के शावक को बच्चे को अभी पंख नहीं उगे हैं और उसके माता पिता कहीं गए हैं जंगल में उसके लिए कुछ लाने के लिए, तो उस समय डर के मारे चे 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 कलता करता है, चिल्लाता है, रोता है, मैया कब आएगी, नहीं तो उल्लू से खा जाएंगे, और मैया आएगी तो कुछ खिलाएगी, इसलिए छटपटाता है, रोता है। ऐसे ही मैं सब समय आपका गुणानुवाद करूं, फिर आए जैसे वो तो बच्चा मैया के लिए रोता है और वो खाने के लिए रोता है, मैया के लिए नहीं रोता। आ रहा है समझ में, वो मैया के प्रेम करने के लिए, मैया की सेवा के लिए, खुशी के लिए नहीं रो रहा, वो अपने स्वार्थ के लिए, जब मैया आएगी तो उसका डर चला जाएगा, उसको वो कुछ खिलाएगी। मुझे बहुत धिक्कार है, मुझे ऐसा नहीं, मैं चाहता जैसे बच्च तरह सुधारता, जैसे बछड़ा शाम तक भूखा है, शाम को गैया आई और बछड़ा मैया को देख करके डकरने लगता है, और जब घर का मालिक उसको खोलने के लिए जाता है दूध दुहने के लिए, दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, खोलने नहीं देता, और ये डां डां चिल्लाता है और मैया की चिंता करता है, यदि खोला मुश्किल से मैया के स्तन पर जाता है, चिल्लाता भी है मैया के स्तन पर जा रहा है और जोर से मैया का स्तन पान करने लगता। ये बछड़ा किस लिए रो रहा था, मैया के लिए रो रहा था, हाँ मैया के लिए, तो किंतु किस लिए, अपने दूध के लिए, दूध पी लिया पेट भर गया, मैया से कोई जरूरत नहीं, ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा नहीं चाहिए। पुकार रहे हैं भगवान को किंतु अपने स्वार्थ के लिए, तो ये भक्ति नहीं है, इस चीज को समझिए। ऊपर से लगता है कि ये भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किंतु मन उनका तो प्रेम तो है नहीं। तीसरी बात, प्रिय प्रिय विषुतंग विषन्ना, प्रिया जिस प्रकार से अपने प्रियतम के लिए, विदेश में यदि उसका प्रियतम है तो उसके लिए चिंता करती है, उसका गुणानुवाद करती है और उसकी सेवा के लिए चेष्टा करती है, इस प्रकार से हे प्रभु हमारा मन आपके चरण में लग जाए। यह किसका विचार है, चित्रकेतु महाराज का। यहां तक तो सब साधक हैं, किंतु ये भी हमारा उद्देश्य नहीं, इसको भी पास में रख करके आगे बढ़िए। कैसे पढ़िए, भागवत में बतलाया गया ज्ञानी प्रया समुद्पाश्य नमन्त एव सन्मुखरितं भवदीय वर्तां स्थाने स्थिता तन्वं मनोभिर् प्रायसो अजित जीतो अपि त्रैह त्रैलोक्यम्। जो लोग ज्ञान को भी छोड़ करके, तत्व ज्ञान को भी छोड़ करके, कृष्ण भगवान है इसको भी भूलकर, कृष्ण मेरे प्रिय बंधु सखा हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, कृष्ण हमारे लाडले बेटे हैं, इस प्रकार से उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्त लोग श्रेष्ठ हैं इसे बहुत। इसलिए इनसे भी श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी। कैसे हनुमान जी हैं, बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, भगवान की सेवा राम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। एक समय सीता जी अपने स्नानागृह में थी, स्नान किया और श्रृंगार कर सिंदूर लगा रही थी, हनुमान इनको खोजता हुआ पहुंच गई, मैया किधर गई, मैया किधर गई, देखा जी वो सिंदूर लगा रही थी, मैया ये क्या कर रही, तो मैं सिंदूर लगा रही हूं, तो इससे क्या होता है, अरे तुम्हारे पिताजी है ना मेरे पति राम, वो कभी नहीं मरेंगे, अजर अमर हो जाएंगे। ओ ये बात ठीक है, वो निकल करके चले गए, निकल करके जब चली गई तीनों ने भी स्नान किया और सारे शरीर में पोत लिया सिंदूर, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर पहनाते हैं। ये किस लिए पोत लिया, यदि यहां मांग में भरने से यदि सिंदूर, रामचंद्र जी चिर जीवन रहते हैं वो मरेंगे नहीं, तो हम सारे शरीर में हम लगा लेंगे, राम की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। राम के लिए सीता जी के खोज के लिए जाते हैं, रावण को भी परास्त करते हैं, सीता जी को कहते हैं जी हमारे पीठ पर चलो, वो राजी नहीं हुई, राम के युद्ध में, रावण के युद्ध में कितनी उन्होंने सेवा की, ये सब आप लोग जानते हैं, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसी सेवा ये दास्य भाव की कहलाती है, किंतु हनुमान जी कभी कभी ललकते हैं कि राम यदि हमें आलिंगन कर लेते हैं, राम से मैं प्रेम से मिल ले जाता, ये नहीं संभव है, उसमें एक बाधा है, राम उनके उपास्य हैं, राम के ये उपासक हैं, उनके उपास्य भगवान हैं, इसलिए वो गंदे से कंधे गले से नहीं हिल मिल लेते, इसलिए इनकी अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है, इनमें कोई भी सांसारिक कामना नहीं है हनुमान में, इनकी कामना है जो किसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर ले, किंतु इसको कहते हैं मर्यादा। राम मर्यादा में बधे हुए हैं, हनुमान भी मर्यादा में बधे हुए हैं, अपना जूठा राम को नहीं दे सकते हैं, अत्यंत मीठी चीज भी हो तो बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी अपेक्षा हनुमान से भी पांडव लोग अधिक श्रेष्ठ हैं। कैसे, अर्जुन से संबंध लगा लिया कृष्ण ने, क्या संबंध, अपनी बहन की शादी सुभद्रा की से, आप लोग जानते हैं कि सुभद्रा के साथ में कैसे शादी, छल बल कौशल से कराया, बलदेव जी चाहते थे कि इसकी शादी हो दुर्योधन से और कृष्ण चाहते थे जे अर्जुन से हो, उन्होंने छल बल से वो कराया, इसलिए कृष्ण उनके साले बने ना, और कुंती जी कृष्ण की बुआ हैं, उस दृष्टि से कृष्ण और अर्जुन भाई भाई रहते हैं। इस तरह से संबंध रख करके कृष्ण अपने सेवकों के लिए घोड़ा धोते हैं, महाभारत के युद्ध में उनका सारथी का काम करते हैं, उनके लिए बाण से छलनी उनका शरीर हो गया, ऐसा सुना नहीं जाता है, ऐसे परम बंधु होकर के सेवा की, किंतु जहां विश्व रूप उनको दिखलाए तो क्या हुआ, डर गए, प्रभु आप जगत के वंदनीय हैं, वेदों के भी प्रतिपाद्य ऋषि हैं, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, मैंने गलती से आपको कहीं सखा कहा हो तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करें, आप मेरे सखा नहीं, आपने प्रेम के वश में हमारे सारथ किया, हमारे सारथी घोड़ों को धोया, उनको चलाया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ये प्रेम का बाधक है, इसलिए इस प्रेम से भी ऊंचा किसका, उद्धव जी का प्रेम है, बहुत ऊंचा उद्धव जी का प्रेम। यदि कृष्ण को कभी ब्रज में किसी को भेजना है तो किसको भेजेंगे? पांडवों को नहीं भेज सकेंगे, किसको भेजेंगे? जो अपने मन के अनुकूल हो। ये कौन है? एकमात्र यदुवंशियों में उद्धव है। किंतु ये उद्धव जी ब्रज में जाते हैं और गोपियों का प्रेम देखते हैं, नंद बाबा यशोदा जी का प्रेम देखते हैं, विस्मित रह जाते हैं। कहे कृष्ण तो हमने सोचा था जी ये द्वारका में है। द्वारका में नहीं है, कहाँ है? ये तो पूर्ण रूप से ब्रज में बैठे हुए हैं, ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। गोपियों ने अपने प्रेम से इनको बांध रखा है। जिस समय में उद्धव गए ब्रज में, उस समय में नंद बाबा जी के घर में पहुंचे शाम को। जब शाम को वहां पर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। जसोदा जी अंधी हो गई थी, कृष्ण प्रेम में बावरी हो गई थी। नंद बाबा सब समय अपने लाला के लिए सब समय चिंता करते हैं। उद्धव जी को किसी प्रकार से दूसरों के घर से कुछ चावल और अन्न मिला करके, जिसको खीर कहते हैं, वो बना, वो इसमें भी चीनी टीनी नहीं पड़ा। घर में क्यों नहीं बना? कौन बनाए? कौन? जो सोदा जी ने तो खाना पीना रसोई बंद कर दिया। जब कृष्ण ही नहीं रहे, हमें छोड़ करके चला गया, तो किसके लिए रसोई बने? बर्तन औंधे हो गए, चूल्हे पर मकड़सों ने जाला बुन दिया। मकड़े जाल बुनते हैं ना, तो रसोई तो बनी नहीं, बर्तन साफ नहीं हुए और मकड़े ने ऊपर से जाला बुन दिया। अंधी हो गई है कृष्ण के लिए। नंद बाबा की अद्भुत दशा है, अब वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनको कृष्ण की याद आती है। ब्रज में कहीं निकलते हैं तो कृष्ण की याद है, उनके चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं उनकी बंसी मिल जाती है, कहीं कुछ। जमुना के तट पर नहीं जाते, कृष्ण यहीं पर जाता था, इसलिए बड़े जोर से रोने लगते हैं। वो पूछना चाहिए हमारा बेटा कैसा है, लाला कैसा, कृष्ण है। किंतु ज्यों ही कृष्ण का स्मरण आया, बड़े जोर से रोने लगे, हिचकी बंद हो गई, पूछ नहीं सके। उन्होंने दूसरे रूप में पूछा, हमारा भैया वसुदेव ठीक है, कुशल से है? कृष्ण के लिए पूछी नहीं, कृष्ण शब्द ही नहीं आया उनके जीव पर। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? वसुदेव हमारा भैया ठीक है? वो पाप की मूर्ति था, अपने पापों से वो मारा गया। कंस, कंस पाप का मूर्ति थी, अपने आप कृष्ण क्या मारेगा उसे? वो अपने पाप से, दुष्कर्मों से ही मारा गया। कोई व्यक्ति को कोई व्यक्ति नहीं मारता, कौन मारता है? उसके दुष्कर्म मारते हैं, ये अपने पापों से मारा गया। ये कहते हुए कृष्ण की याद आई और बड़ी जोर से रोने लग गए और उनकी लीलाओं का गान करने लगे। आ कृष्ण जमुना पुलिन में जाता था, गायों को चराता था, अपनी मां का बड़ा प्यारा था। ऐसा कौन सा वृक्ष है वृंदावन में जिसके नीचे अपनी लीलाओं को नहीं करता था, जहां पर अपनी सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में नहीं खेलता था? ऐसा स्मरण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने मन को बहलाने के लिए जाते और वहां पर कृष्ण के फुटप्रिंट्स को देख करके विभोर हो जाते, रोने लगते। इस प्रकार से वो कुछ पूछ न सके कृष्ण के विषय में। उद्धव जी कहते हैं ये कृष्ण ने हमें इनको सांत्वना देना के लिए भेजा, सांत्वना देना के लिए भेजा। मैं इन्हें क्या सांत्वना दूं? इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन धारण करना सार्थक है जो कृष्ण कहते हुए आंखों से आंसू जिनके निकल आते हैं। और ये दिन रात कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इनसे आज जैसा संसार में दुर्लभ कौन होगा व्यक्ति सौभाग्यवान? यशोदा को देखो, दिन रात रोते रोते मरणासन्न हो गई है, एकदम दुबली पतली हो गई है, खाना पीना जिनके लिए छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने कहा जी आपका जीवन धन्य है, आप परम सौभाग्यवान हैं जो परम ब्रह्म को भी अपना पुत्र मान करके और उसके लिए रो रहे। इतने सुनते ही नंद बाबा ने क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया, बेटा मैं तो तुम्हें समझता था जो तुम कृष्ण के संगी हो और साथी हो, मित्र हो, तुम बहुत चालाक चतुर हो गए, बुद्धिमान हो गए। मैं देखता हूं कि तुम्हारे अभी दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे, अकल तुमको कुछ नहीं हुई। तुम कह रहे हो मुझे सौभाग्यवान कर रहे हो। मैं देखता हूं कि यदि विश्व में कोई दुर्भाग्य व्यक्ति है तो मैं हूं। तुम कहते हो जिस तुम सौभाग्यवान इसलिए कि तुम्हारा पुत्र परब्रह्म है, ईश्वरों का ईश्वर है, और मैं देखता हूं कि ईश्वरों का ईश्वर परब्रह्म हमारे घर में पुत्र में के रूप में आकर देखा जे यहां पर आना हमारे लिए उचित नहीं, हमें छोड़ करके चला गया दूसरी जगह, तो हमारे जैसा दुखी कौन होगा। और ये कह करके विलाप करने उद्धव जी ने सोचा मैंने गलती किया। सचमुच ये बात ठीक कह रहे हैं, किंतु शास्त्र में कहते हैं कि जो कृष्ण के लिए रोए उसे बढ़कर के कोई सौभाग्यवान नहीं। तो मैंने तो ठीक ही कहा था, किंतु इससे तो इनको सांत्वना होगी नहीं। क्या कहूं, इतने बड़े बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों का वेत्ता, बृहस्पति जिनके गुरु हैं, कृष्ण जिनके सखा हैं, उनके मुख में कोई उत्तर नहीं आया। तो यशोदा जी की बात सोचिए क्या, उन गोपियों की बात सोचिए क्या, गोपियों का जो प्रेम देखा निश्चल, सुनकर के वो आश्चर्यचकित रह गए। प्रेम यदि है तो इन गोपियों में ही है, तनिक भी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है, बस कामना क्या है, कृष्ण प्रसन्न रहे। न कर्म है, न योग है, न ज्ञान है, न तत्व, कुछ भी नहीं, सब उनके चरणों में खिलते हैं, दे करके आश्चर्यचकित होकर के प्रार्थना करने लगे। क्या आशाम हो चरण ऋण जुषाम हम श्याम, वृंदावने किम अप गुल्म लता औषधि नाम, आहा मैं गोपियों की चरण धूलि को पाने के लिए मैं वृंदावन की घास लता बन जाता और उनकी चरण धूलि लग जाती तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। इन गोपियों ने इस पर ब्रह्म को अपनी सेवा से अपने वशीभूत कर रखा है। कृष्ण स्वयं इनके ऋणी हैं, कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं मैं गोपियों का ऋण देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकता, न पारे हम निर्बद्ध सकूजा। इसलिए उन्होंने कहा क्या, बंदे नंद ब्रजे स्त्रीना, नंद महाराज जी के आंगन में उनके गांव में जो रहने वाली गोपियां हैं उनकी चरणों की एक धूली यदि बन जाऊं, बनना तो संभव नहीं, उधूली को मैं नमस्कार करूंगा। वो हमारे ऊपर में करुणा करे, ये कह करके एकदम प्रेम से गदगद हो गए। गोपियों से पूछा, गोपियों ये तो बतलाओ मैं जाऊंगा तो कृष्ण से क्या कहूंगा, ये कहूं जो तुम्हारे विरह में गोपियां मर रही हैं, आप नहीं जाएंगे तो दो दिन के बाद में उनको जिंदा नहीं देखेंगे, इसलिए आपको जल्दी से लौट करके मथुरा से वृंदावन में आए, ये कहूं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार श्रीमती राधिका जी ने कहा खबरदार ये मत कहना, तुमने कहा जे आपके विरह में, तुम लोगों के विरह में कृष्ण बड़े विरहित हैं, बड़े दुखी हैं, तो हम तो मर नहीं गई, सुन करके भी जीवित हैं, किंतु कृष्ण का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल है, यदि सुन लिया जे कृष्ण के विरह हमारे विरह में ये तड़प रही हैं गोपियां तो जल्दी से मर जाएंगे, बच नहीं सकते, इसलिए खबरदार मत कहना, यदि कहना भी तो थोड़े से पहले कहना, फिर दूसरे दिन थोड़ा कहना, फिर धीरे धीरे कहना। जैसे कोई एक पुराना कपड़ा है ना, यदि उसमें पानी आ गया तो उसको निचोड़ना है तो कैसे निचोड़ेंगे, धीरे धीरे संभल कर, यदि जोर से ऐंठ देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। इसलिए कृष्ण का कहीं कोमल हृदय कहीं फट ना जाए, इसलिए बहुत कहना गोपियां बड़ी सुखी हैं, यदि तुम उनको भूल सकते हैं तो वो भी भूल गई हैं तुम्हें, और श्रृंगार करती हैं, खाती पीती हैं, खूब हंसती हैं। कृष्ण यदि वहां पर सुखी रहे और हमें पीस भी दें तो कृष्ण सुखी रहे। अश्लीष अपादरतां पिनस्तु माम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा पितथा तु लंपटो मत प्राणाथस्तुसा। यदि कृष्ण हमें आलिंगन बाहु में आलिंगन कर ले और आनंद दें अथवा हमें छोड़कर के दूसरी स्त्रियों को प्यार करें, चाहे वो लंपट हो चाहे जो कुछ भी हो, किंतु हमारे प्राणनाथ हैं, हम उनके बिना सेवा की रह नहीं सकते हैं, हमारे अभिन्न हृदय हैं, ये गोपियों का मनोभाव है। किस लिए बतलाया? इन्हें सुनकर के गोपियों जैसे कृष्ण की सेवा की वासना आए। गोपियां करती थी क्या? चलते फिरते उठते बैठते, झाड़ू देते समय, बच्चे को पलने में झुलाते समय, ओखल में कोई चीज कूटते समय, आटा पीसते समय, आंगन लिपते समय, पक्षी को पढ़ाते समय वो क्या करती थी? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, ऐसी दिनचर्या थी। घर लिप पोत रही हैं, किंतु उनकी चित्तरूपी रथ पर कौन चढ़ा हुआ है? कृष्ण उनके चित्त पर चढ़े आरूढ़ है। जैसे किसी चीज पर हम चढ़ते हैं उनके मनोरथ पर, मन पर के जो मनोरथ है उसके ऊपर में कृष्ण सब समय कृष्ण ही कृष्ण, इधर उधर जिधर तिधर जित देखो तथा श्याममयी, ऐसी उनकी भावना थी। इसलिए बच्चों को सुला रही है थप थप ही दे करके न, और कर रही है क्या, चित्त कहाँ है? गोविंद रामो कोई सवेरे उठ करके पिंजड़े में सुख पक्षी को पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं? गोविंद दामो कोई बच्चे को सुला रही है और पलने में झुला रही है, थपकियां दे रही हैं और लोरी क्या पढ़ रही हैं? गोविंद दामो कोई झाड़ू लगा रही हैं, कोई रसोई पका रही हैं, किंतु कर का रही हैं चित्तों। कभी कभी रोटी जल भी जाती है, कोई बात नहीं, और वो बड़ी स्वादिष्ट बन जाती है, क्यों? गोविंद दामो यह गोपी प्रेम जो है यही शुद्ध भक्ति है। इस चीज को समझिए, जब कोई भी कामना वासना हमारे हृदय में नहीं रहेगी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने तन मन वचन से सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए होंगी, चित्त मन में उनमें रम जाएगा, और उस समय जो कीर्तन होगा भगवान की कथाएं होंगी, वो भगवान का स्वरूप है, उसे जल्दी ब्रजेंद्र नंदन मिलते हैं। और नहीं तो लाखों वर्ष तक जब तप ध्यान कीर्तन करने से भी और किसी भी कार्य से नहीं होगा, ये भक्ति का मूल प्राण है। एक चीज और याद रखेंगे, कृष्ण प्रसन्न अपने आप हो जाते हैं ये भक्ति नहीं है। यशोदा जी कृष्ण का कान गर्म कर रही और कृष्ण रो रहे हैं मैया मैया, और चारण मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है और कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है, ताल ठोक करके उसे लड़ रहे, बड़ा आनंद हो रहा है कृष्ण, ये आनंद होना भक्ति नहीं है। कृष्ण तो आनंद हो रहे हैं आनंदित, क्यों ये भक्ति नहीं है? क्योंकि कृष्ण को मार डालने के लिए वो लड़ रहा है, और यशोदा जी कृष्ण के प्रेम के लिए, ये बच्चा हमारे केवल दूध पर रक्षा नहीं हो सकती है, गैया का दूध से इसे मक्खन बनाऊंगी, तरह तरह की चीजें बनाऊंगी, और ये इसने मटकी को फोड़ दिया, बस कृष्ण को, कृष्ण से भी अधिक कृष्ण की चीजें प्यारी है, ये भक्ति है। इसलिए अपने तन से मचन से भावना से जितनी भी चेष्टाएं हैं वो किसके लिए हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, अनुकूल रूप में हो, प्रतिकूल रूप में ना हो, यही उत्तमा भक्ति है। इसको सोच करके देख सुन करके ऐसा ही गोपियों जैसी भक्ति संसार में ऐसा कोई नहीं है। इसलिए ऐसी भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा दी है। अभिभक्ति का स्वरूप बतलाना था, अन्य अभिलाषिता का तात्पर्य तो मैं बतला नहीं सका, यदि संभव होगा तो दूसरे दिन जहाँ पर होगा या इनके घर पर या पास में मंदिर में, 3 दिन और है वहाँ और 2 दिन शायद सुबह में है, इन चीजों को बतलाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि सहज से सहज रूप में लोग भक्ति का स्वरूप जान करके वैसे ही भक्ति को करने की चेष्टा करें। आज यहीं तक अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को 2-4 मिनट समय हो तो अंग्रेजी में, इन लोगों ने समझा नहीं, हमारे साथ में घूम रहे हैं और देशों में तो अंग्रेजी में बोलता हूँ तो ये लोग समझ जाते हैं और मेरे लिए भी अधिक बोलना थोड़ा सा मना है, इसलिए यदि हो सके तो आप थोड़ा सा संक्षेप में अंग्रेजी में कुछ बतलाइए जिससे कि ये लोग भी समझ जाए। इसके बाद में आरती कीर्तन और इसके बाद में कीर्तन होकर के समाप्त करें। थोड़ा सा बहाना और बनाओ, ठीक है तो ठीक है, तय कीर्तन करो। तो वो हो गया, कल वाला बतलाया था, वो हो नहीं सकता। लो कीर्तन करो, नमामि नंदनंदन। ये
नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि
I'm not afraid to die. Thank you. प्रभु जी।